प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो ले चल प्रभु तू मुझको वहाँ, तेरी स्तुति सदा होती जहाँ। ले चल प्रभु तू मुझको तेरे लिए गाता रहूं मैं, तेरे ही गीत। मेरी मंजिल हो तुम।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भागी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार आमोस के द्वारा से पड़ोसी राज्यों और इसराइल और यहूदा के लिए दंड की घोषणा करता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते और सीखते हैं, अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ हम आपके वचन का मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि आमोस नबी की पुस्तक के द्वारा हम भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है इस घड़ी उन भाई बहनों के लिए जो बहुत ही निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुए, शांति और आनंद दें, उन्हें सफलता दें, ताकि अपने जीवन में आपको स्मरण करने पाएं। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि आमोस विभिन्न राष्ट्रों के लिए परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी करते करते इसराइल तक आ पहुंचा है। सीरिया को परमेश्वर दंड देगा क्योंकि उन्होंने गिलाद प्रदेश में इसराइल के गोत्रों को लोहे के उपकरणों से मारा था। पलिस्तिया को परमेश्वर दंड देगा क्योंकि उन्होंने इसराइलियों को बंदी बनाकर दास होने के लिए बेचा था। फिनेके भी दंड का भागी होगा क्योंकि उन्होंने दाऊद की मित्रता का मान नहीं रखा था। एदोम सदैव ही इसराइल से बदला लेने का अवसर खोज रहा था और उसके कारण वह हानि पहुंचाता था। अमोनियों ने गिलाद में बच्चों को धरती पर पटक कर मारा था और गर्भवती स्त्रियों का पेट फाड़ डाला था। मोआब ने एदोम के राजा को जलाकर चूना बनाया था और यहूदा ने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़ा था, व्यवस्था का उल्लंघन किया था, वे झूठे देवताओं की उपासना करते थे। तब अंत में वह इसराइल के लिए परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी करता है। वे दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते थे और घूस लेते थे, वहां गरीबों पर अत्यधिक अत्याचार हो रहा था। तब आज हम आगे बढ़ते हुए आमोस नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। लिखा है, वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं। इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु मेरे विचार में उनके स्वार्थी, लोभी, धनवान, न्यायी यह भी नहीं चाहते थे कि गरीबों को विलाप करने के लिए सिर पर डालने को मिट्टी भी मिले। यह आज के युग की लालसा का चित्रण है। परमेश्वर ऐसे देशों को दंड देता है। यहां पर हम पढ़ते हैं, नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। जी हां, नम्र लोगों को न्याय नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वे बोलते नहीं थे। एक कहावत है, चरमराने वाले चक्र में ग्रीस लगाया जाता है। आज नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी नहीं है। आज उग्रवादियों का युग है। इसराइल में गरीबों और नम्र लोगों को न्याय नहीं मिलता था। आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं और गंभीर बात है यहां पर, बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। यहां कुमारी से तात्पर्य है वेश्या। परमेश्वर कहता है कि वे विचार से उसका नाम अपवित्र ठहरता है। इससे प्रकट है कि जिसे हम नई नैतिकता कहते हैं, वह वास्तव में नई नहीं है। इसराइल में तो वह पहले से ही था, परंतु परमेश्वर उससे घृणा करता है। वे इस विषय में परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। मेरे प्रियो, आमोस को ख्याति प्राप्त नहीं थी। वह गरीबों का पक्ष लेता था और अधर्म का तिरस्कार करता था। उसने गरीबों के साथ अन्याय को अनुचित ठहराया और अनैतिकता को भी तुच्छ जाना। आमोस 2:8 में लिखा हुआ है, वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। यहां पर कहता है कि वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 उसके 12-13 में परमेश्वर ने एक अति उत्तम नियम दिया था, यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना, सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। एक गरीब मनुष्य के पास अपने बिस्तर की अपेक्षा बंधक रखने को है ही क्या, उसे शरीर गर्म रखने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। परमेश्वर कहता है कि उसे रात में सोने के लिए बिस्तर चाहिए होगा। परमेश्वर अब इसी बात पर रोष प्रकट करता है कि इसराइल ने इस नियम को तोड़ा है। मेरे प्रियो, आज हम न्याय की बात करते हैं, परंतु यह कैसे दुख की बात है कि यदि कोई परिवार अपनी गरीबी के कारण किराया न दे पाए तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन गरीबों के पक्ष में बहुत कुछ कहता है। आगे हम पढ़ते हैं, हर एक वेदी के पास परमेश्वर ने इसराइल को एक ही वेदी दी थी, यरूशलेम का मंदिर, परंतु उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए अनेक वेदियां बना ली थी। इसलिए लिखा है आगे, दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। वह उनके शराब पीने की बात को कहता है, अर्थात वह उन्हें दोषी ठहराता है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं, आमोस 2:9 में लिखा हुआ है, मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मेरे प्रियो, यहूदा के रेगिस्तान से आने वाले इस प्रचारक की अभिव्यक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। एमोरियों के विषय परमेश्वर उसके मुख से कहलवाता है, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। परमेश्वर ने अमोरियों को नष्ट किया। यहोशू की पुस्तक 24:8 में लिखा है, तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। मेरे प्रियो, हमने यह तो कहा था कि आज मुआबी नहीं रहे, परंतु आपको यदि किसी एमोरी को देखना है, यदि आपने किसी एमोरी को देखा भी है तो वह कब देखा था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अब्राहम से बहुत पहले कहा था कि वह उसे प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जाएगा, क्योंकि वहां एमोरी थे और उनका पाप का घड़ा भरा नहीं था। मैं उन्हें पाप से मन फिराव का अवसर दे रहा हूं कि वे मेरी ओर फिरें। अब आप कहेंगे, उनके पास तो मूसा की व्यवस्था नहीं थी और वे धर्म का मार्ग नहीं जानते थे। मेरे प्रियो, रोम की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस कहता है, 2:12-14 में, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। अब जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वे हत्या करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से कैसे रुकेंगे? रोमियो के पत्र 2:15 में आगे पौलुस कहता है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है और यदि हमारे पास 10 आज्ञाएं नहीं होती तो भी हमारा विवेक हमें बुरे कामों का दोषी ठहराता था या निर्दोष ठहराता। या तो हम अपने आप को दोषी ठहराते या निर्दोष कहते। मनुष्य में सही और गलत का बोध अंतर्निहित है। इसी आधार पर परमेश्वर ने अमोरियों को दंड दिया। वे पाप करने से नहीं रुके। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तेरे वंशजों को 420 वर्ष मिस्र में रखूंगा जब तक कि एमोरियों के पाप का घड़ा न भर जाए। मेरे विचार में कट्टर से कट्टर मुक्त विचारक भी परमेश्वर से नहीं कहेगा कि एमोरियों को या उनके साथ पक्षपात किया गया है। या हम यूं कह सकते हैं कि एमोरियों को पश्चाताप के लिए और अधिक समय क्यों नहीं दिया गया। मैं तो परमेश्वर की बात मानूंगा कि किसी जाति को 420 वर्ष दिए जाएं कि वे सही निर्णय लें, तो वह बहुत अधिक समय है। सच तो यह है कि एमोरी परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। यरदन पार करके यहोशू एमोरियों के देश में आया। यरीहो एमोरियों का नगर था। राहाब भी एमोरी थी। केवल वह और उसका परिवार ही नाश होने से बच गया। मुआबियों का भी नाश हो गया, परंतु रूत प्रभु यीशु के वंशावली में आई। इसी प्रकार एमोरियों के सर्वनाश में भी राहाब वेश्या बची थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल से कहता है कि जिस पाप के लिए उसने एमोरियों का सर्वनाश किया, वही पाप आज वे कर रहे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वही पाप आज हम भी कर रहे हैं। आमोस 2:10-11 में लिखा है, मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इसराइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता था कि तुम इस देश में मेरी सेवा करो, अपने युवकों को भविष्यद्वक्ता और नाजीर बनाओ, पर देखो तुमने क्या किया। आमोस 2:12 में लिखा है, परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करे। नाजीर एक इसराइली होता था जो स्वेच्छा से परमेश्वर को समर्पित होता था। नाजरी के लिए 3 बातें वर्जित थीं। उसे सिर का बाल नहीं काटना था। हम 1 कुरिन्थियों की पत्री 11:14 में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है कि पुरुषों के लिए बड़े बाल रखना लज्जा की बात है। जी हां, नाजरी लज्जा उठाने के लिए था। दूसरी बात, नाजरी को शराब नहीं पीनी थी और न ही दाखलता का फल खाना था, क्रिसमस भी नहीं। परंतु इसराइली उन्हें शराब पिलाकर उनकी शपथ को भ्रष्ट करते थे। नाजरी को मृतकों को भी नहीं छूना था, उनके निकट भी उन्हें नहीं आना था। यदि उसका कोई प्रियजन मर जाए तो वह उसके क्रियाकर्म में भी नहीं जा सकता था। यह सब इस बात का प्रमाण था कि उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर और कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, नबियों को आज्ञा दी गई कि भविष्यवाणी ना करें। उन्होंने भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, हम यह न सोचे कि किसी देश का पतन बाहरी कारणों से होता है। देश अपने भीतरी कारणों से ही हमेशा नाश होता है, जैसे रोम। यह कैसी सच्चाई है। देश को गिराने के दो कारण होते हैं, शराब, जी हाँ, शराब सब अपराधों की जननी है। दूसरा कारण है परमेश्वर के वचन को अनसुना करना। हम धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से नहीं पूछते कि क्या करना है। इस्राएल की यही दशा थी, वे परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते थे। वे परमेश्वर को समर्पित जनों को शराब पिलाकर भ्रष्ट करते थे, जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के दासों को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। वे मीठी मीठी बातें सुनना चाहते थे। आमोस 2 अध्याय उसके 13 पद में आगे कहता है, देखो मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, कुछ लोगों का मानना है कि यह पद परमेश्वर का अपमान करता है, परंतु यह पद वास्तव में परमेश्वर के असमंजस्य को प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है कि जिस पाप के कारण मैंने एमोरियों का सर्वनाश किया, वही पाप तुम भी करते हो और सोचते हो कि मैं आंखें बंद कर लूं, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। मैं तो तुम्हारे कारण बोझ से दब गया हूं। तब वह आगे कहता है, आमोस 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में, इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा, धनुर्धारी खड़ा ना रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा, सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा और शूरवीरों में से जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, कुछ विचारकों का सोचना है कि यह पद आमोस द्वारा व्यक्त भूकंप के संदर्भ में है, परंतु मेरे विचार में यहां भूकंप का कोई भी संदर्भ नहीं है। इसराइल वास्तव में एक शक्तिशाली राज्य था। परमेश्वर ने उनके बैरियों को दूर रखा था, परंतु अब उनके शहर पनाह गिर गई थी और बैरी भीतर प्रवेश कर गए थे। उनके बलवंत पुरुष बलहीन हो गए थे। परमेश्वर ने इसराइल से कहा, तुम लोग दुर्बल हो रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। आमोस यही कहता था और इसी कारण वे उसे खदेड़ना चाहते थे, भगाना चाहते थे। वे उसका संदेश सुनना पसंद नहीं करते थे और सुनना भी नहीं चाहते थे, परंतु वह चुप नहीं रहा। मेरे प्रियो, यह तो इसराइल की बात थी, परंतु देश चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि वह परमेश्वर का वचन ना सुने, परमेश्वर को अलग करके अपने आप को आत्मनिर्भर एक शक्तिशाली समझे, तो उसका पतन निश्चित है। परमेश्वर ने इसराइल को व्यवस्था दी थी कि उसका पालन करे और परमेश्वर की विधियों को माने तो वह उस देश में सदा वास करेगा, परंतु उन्होंने व्यवस्था को तुच्छ जाना और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें विदेशों में बंदी बनाकर भेज दिया। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है। हमें परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। वचन की व्याख्याएं तो अनेक होंगी, तरह तरह के अर्थ निकाले जाएंगे, समझाए जाएंगे, परंतु वचन बदलता नहीं है। परमेश्वर ने इसराइल से जो कहा, आज वह हमसे भी वही कहता है। परमेश्वर के पास देर है, अंधेर नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरजवंत है। वह मन फिराव का समय देता है, जैसे उसने एमोरियों को 420 वर्ष दिए कि वे उसकी ओर फिरें। मेरे प्रियो, भ्रम में न रहें, परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा। परमेश्वर के धीरज को उसकी दुर्बलता आप न समझें। मेरे प्रिय श्रोता मित्र, यदि आज आप पापमय जीवन जी रहे हैं तो आप यह न सोचें कि आपको कोई नहीं देख रहा है। परमेश्वर ने आपको समय दिया है मन फिराव का, उससे बाहर आने का। आज समय है कि प्रभु की ओर फिर जाएं, अपने जीवन को उसकी ओर ले आएं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि आप नाश किए जाएं, परंतु वह चाहता है कि आप पश्चाताप करें और उसकी ओर फिर जाएं, ताकि वह आपको अपने साथ संगति में ले सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
चलता